नमस्कार भारत, आज है 11 जून दिन शनिवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। बॉक्सिंग के किंग मोहम्मद अली को उनके शहर के कब्रिस्तान में दफनाया गया। हजारों लोगों ने अपने चहेते खिलाड़ी को दी अंतिम विदाई।
I think he decided very young to write his own life story.
राज्यसभा की 57 सीटों के लिए आज होगा मतदान। कई दिग्गजों के लिए ऊपरी सदन की राह नहीं होगी आसान।
सिब्बल को तो सिर्फ 5 वोटों की जरूरत है और उसके कंपैरिजन में प्रीति महापात्रा को 22 वोट चाहिए, लेकिन जो माहौल है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है।
झारखंड में स्थानीयता के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी ने किया 48 घंटे की आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान। कई दलों ने किया समर्थन। होगी फिल्मों की समीक्षा और अन्य खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। महान मुक्केबाज मोहम्मद अली को आज अमेरिका के केंटकी में उनके गृहनगर लुईविल में दफनाने के बाद एक सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस सभा में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, मशहूर अभिनेता विल स्मिथ, पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई और इस सभा में करीब 14,000 लोगों ने शिरकत की। मोहम्मद अली को मानवाधिकार के लिए उनकी लड़ाई के बारे में खास तौर पर इस सभा में याद किया गया। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के डॉक्टर नरेंद्र डाबोलकर की हत्या के मामले में सीबीआई ने हिंदू जन जागरण समिति के नेता वीरेंद्र तावड़े को पनवेल से गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते सीबीआई ने तावड़े और उसके साथी सारंग अकोलकर के घर पर छापे मारे थे। इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। यूरोपीय संघ के आंतरिक मंत्रियों ने फ्रांस के अनुरोध पर बंदूकें खरीदने के लिए कड़े नियमों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे इंटरनेट के जरिए बंदूक खरीदने, आम लोगों के लिए सेमी ऑटोमेटिक हथियारों को खरीदने पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। इससे निष्क्रिय हथियारों को दोबारा इस्तेमाल में लाने पर भी रोक लग सकेगी। फ्रांस के आंतरिक मंत्री बर्नार्ड कज़नोव ने कहा है कि इससे यूरोपीय लोगों को चरमपंथियों और संगठित अपराध से सुरक्षा मिलेगी। नीदरलैंड्स के मंत्री आर्द्र वेन दर सुअर ने भी इस बारे में ये कहा।
The new directive achieves the right balance between improving the security of EU citizens and the internal market.
इन नए कदमों से यूरोपीय संघ के नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी हथियारों के आंतरिक बाजार में संतुलन बन पाएगा। इस कड़े नियमों से कानूनी हथियारों के गैर कानूनी बाजार में पहुंचने का खतरा कम हो जाएगा। ये थे आर्द्र वेन दर सुअर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया की सरकारी समर्थित सेना को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के गढ़ रका शहर की तरफ बढ़ने में कामयाबी मिल रही है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि रूसी वायुसेना की मदद से सीरियाई सेना तबका शहर में आईएस के कब्जे वाले एक चौराहे तक पहुंचने में कामयाब हुई है। ये वो जगह है जहां एक अहम हवाई बेस है। ये रका शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे पहले अमरीकी सेनाधिकारियों ने कहा था कि कुर्द और अरब लड़ाकों ने सीरिया में आईएस के नियंत्रण वाले मनबीज शहर को घेर लिया है। लीबिया में त्रिपोली स्थित एकीकृत सरकार के समर्थन वाले सुरक्षा बलों ने कहा है कि उनके सैनिकों ने सिर्त शहर को नियंत्रण में ले लिया है। इराक और सीरिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग में सिर्त शहर पर सेना का कब्जा एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और रेडियो पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। महान मुक्केबाज मोहम्मद अली के पार्थिव शरीर को शुक्रवार को अमेरिका में उनके गृहनगर लुईविल के एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अपने चहेते खिलाड़ी को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग लुईविल की सड़कों पर उमड़े और उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी। मोहम्मद अली की शोक सभा में कई नामी गिरामी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। 3 बार विश्व हेवीवेट चैंपियन रहे 74 वर्षीय मोहम्मद अली का लंबी बीमारी के बाद 4 जून को निधन हो गया था। एक रिपोर्ट के साथ न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
बॉक्सिंग के 3 बार हेवीवेट विश्व चैंपियन महान मुक्केबाज मोहम्मद अली को उनके वतन लुईविल शहर के केव हिल कब्रिस्तान में निजी समारोह में दफनाया गया। जनाजे के दफन के समय केवल उनके परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही मौजूद थे। इससे पहले उनकी शव यात्रा शहर के हर उस हिस्से से होकर गुजरी जहां मोहम्मद अली ने अपने जीवन का अहम हिस्सा गुजारा था। मोहम्मद अली को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग कतारों में खड़े होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते नजर आए। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े बहुत से लोग अली की तस्वीरें हाथ में लेकर अली अली कह रहे थे।
It was hard. I'm missing a lot.
I'm not dumb. I knew eventually he would pass, but I just wasn't ready for it, I guess. And now he's gone.
पिछले हफ्ते शुक्रवार को मोहम्मद अली का निधन हो गया था। वो करीब 30 वर्षों तक पार्किंसन सिंड्रोम से जूझते रहे थे। शुक्रवार की शाम को मोहम्मद अली की याद में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग शामिल हुए और विभिन्न धर्म के लोगों ने प्रार्थनाएं की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मोहम्मद अली की विधवा लॉनी अली ने अली के चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया।
As a family, we thank the millions of people who, through the miracle of social media, inspired by their love for Muhammad, have reached out to us with their prayers.
मोहम्मद अली को आखिरी विदाई देने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सहित हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ, बिली क्रिस्टल और पूर्व मुक्केबाज लेनेक्स लुइस, माइक टाइसन और इवैंडर होलीफील्ड भी मौजूद थे। मोहम्मद अली के दोस्त बिल क्लिंटन ने अली को याद करते हुए कहा,
I think he decided very young to write his own life story. I think he decided before he had, could possibly have worked it all out.
बिल क्लिंटन कह रहे थे कि मैं समझता हूं कि मोहम्मद अली ने बहुत छोटी उम्र में ही खुद अपनी जीवनी लिखने का फैसला कर लिया था, और मैं समझता हूं कि उन्होंने ये फैसला तभी कर लिया था जब उन्हें ये भी नहीं पता हो सकता था कि उसमें लिखा क्या जाएगा। बिल क्लिंटन ने कहा कि मोहम्मद अली ने हमेशा नौजवानों को प्रेरणा दी है और ये उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आम लोगों को भी इस शोक सभा में प्रवेश के लिए करीब 16,000 मुफ्त टिकट बांटे गए थे, जिससे वो लोग भी अपने चहीते चैंपियन मोहम्मद अली की आखिरी रसूमात में शामिल हो सकें। लेकिन मोहम्मद अली को बॉक्सिंग चैंपियन होने के अलावा मानवाधिकारों के लिए मुखर रहने के लिए भी याद किया जाता है। मोहम्मद अली ने सन 60 के दशक में वियतनाम में अमरीका की जंग में लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में उनसे चैंपियन का खिताब छीन लिया गया था और उन्हें बॉक्सिंग लड़ने से भी रोक दिया गया था। कुछ वर्षों तक उन्हें बहुत से लोगों की नफरत का भी सामना करना पड़ा था। मोहम्मद अली 3 वर्षों के बाद फिर बॉक्सिंग रिंग में वापस आए और 2 बार फिर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता।
आले, आले, आले।
शुक्रवार को अमेरिका और विश्व भर में उनके चाहने वालों ने मोहम्मद अली को भीगी आंखों के साथ आखिरी बार अलविदा कह दिया। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के 57 नए सदस्यों के निर्वाचन के लिए आज 15 राज्यों में मतदान होगा। इनमें से कई उम्मीदवारों का रास्ता बिल्कुल साफ है, यानी जीत पक्की है, लेकिन कई राज्यों में ऐसे उम्मीदवार मैदान में हैं जिन्होंने कई दिग्गजों की जीत की संभावना पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और कर्नाटक जैसे राज्यों का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। सुनिए वात्सल्य राय की रिपोर्ट।
राज्यसभा की 57 सीटों पर नए सदस्य चुनने के लिए आज 15 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश से 11, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 6-6, बिहार से 5, राजस्थान और कर्नाटक से 4-4, मध्य प्रदेश और ओडिशा से 3-3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हरियाणा से 2-2 और उत्तराखंड से 1 सदस्य चुना जाना है। बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में लड़ाई बिल्कुल सीधी है, लेकिन जिस राज्य से सबसे ज्यादा सदस्य चुने जाने हैं उस उत्तर प्रदेश का मुकाबला सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। इसकी वजह है प्रीति महापात्रा की उम्मीदवारी। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी प्रीति ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। उनके मैदान में आने से सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस के खेमे में बताई जाती है, जिसने कपिल सिब्बल को उम्मीदवार बनाया है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं,
उनके पास सिर्फ 12 वोट थे बीजेपी के, एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ी हुई सपोर्टेड बाय बीजेपी, और इतनी ज्यादा हलचल हो गई है कि सब घबराए पड़े। ये बात सही है कि सब कपिल सिब्बल को तो सिर्फ 5 वोटों की जरूरत है और उसके कंपैरिजन में प्रीति महापात्रा को 22 वोट चाहिए, लेकिन जो माहौल है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है, प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है।
कांग्रेस का खेमा उत्तराखंड में भी गुणागणित में जुटा है। यहाँ पार्टी के सामने अपने वोट सुरक्षित रखने की चुनौती है। स्थानीय पत्रकार शिव जोशी ने यहाँ एक सीट पर होने वाले मुकाबले के बारे में बताया।
आंकड़ों की बात है विधानसभा के भीतर, कमोबेश अभी स्थिति ऐसी लगती है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं प्रदीप चमटा, जो हरीश रावत की पसंद बताए जाते हैं, वे शायद जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को बस एक ही चिंता सता रही है कि कहीं अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 59 विधायक मतदान में हिस्सा लेंगे, इनमें से 27 इस समय बीजेपी के पास है, 26 कांग्रेस के पास है, लेकिन कांग्रेस को 6 PDF विधायकों का भी समर्थन हासिल है। बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार जो अनिल गोयल हैं उनको अपना समर्थन दिया है। कांटे की टक्कर होने की पूरी पूरी संभावना है।
दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी कर्नाटक की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर है। बेंगलुरु से पत्रकार इमरान कुरैशी बताते हैं,
इस वक्त वोट का हिसाब नोटों के मुकाबला चल गया था और चुनाव आयोग ने एक विधायक CBI की जांच के आदेश दे दी है। हर उम्मीदवार को 45 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के जयराम रमेश और ऑस्कर फर्नांडिस और बीजेपी के केंद्र मंत्री निर्मला सीतारामन का चुनाव एक तरह से निर्विरोध कहा जा सकता है। मुकाबला दरअसल 4th सीट के लिए है, जिसके लिए कांग्रेस के पूर्व IPS अफसर KR राममूर्ति और जनता दल सेक्युलर के उद्योगपति BM फारूक उम्मीदवार हैं।
जनता दल सेक्युलर के 5 विधायक कांग्रेस के साथ बताए जाते हैं। JDS की चुनौती इन विधायकों को अपने पाले में लाने की है। उधर महाराष्ट्र का चुनावी गणित सीधा है, वहाँ 6 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। स्थानीय पत्रकार अश्विन अघोर बताते हैं,
राज्यसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर विकास महात्मे, विनय सहस्त्रबुद्धे तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से पूर्व नागरी उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल है। शिवसेना की ओर से संजय राउत को फिर से उम्मीदवारी मिली है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की कुल सीटें और उम्मीदवारों की संख्या देखते हुए यह चुनाव निर्विरोध होने की स्थिति है।
राज्यसभा चुनाव के नतीजे आज ही सामने आ जाएंगे और ये जानकारी भी हो जाएगी कि जिन राज्यों में कांटे का मुकाबला है वहां किसका दांव सटीक बैठा और किसकी रणनीति नाकाम हुई।
जानकारी दे रहे थे वात्सल्य राय। कर्नाटक में कारवार तट के पास नौसेना के जंगी जहाज INS विक्रमादित्य पर बीती रात गैस रिसने से 2 लोगों की मौत हो गई। गैस रिसाव की घटना पोत पर जारी मरम्मत के दौरान हुई। हादसे की पूरी जानकारी के लिए मैंने बात की हमारे सहयोगी अश्विन अघोर से।
INS विक्रमादित्य का फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है कारवार तट पर, जहां 2 नौसेना के कर्मचारी और 2 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स उस युद्धपोत का रिवेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में काम कर रहे थे और उसकी मरम्मत कर रहे थे। उस वक्त वहां पर जहरीली गैस के रिसाव की वजह से इन चारों की तबीयत अचानक खराब हो गई। जो रिवेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में से गैस का रिसाव हो रहा था वो इनके शरीर के अंदर जाने की वजह से ये हुआ है। और इन चारों को जब नौसेना के अस्पताल ले जाया गया तो उनमें से 2 की मौत हो गई और 2 की हालत अभी स्टेबल बताई जा रही है।
आपकी नौसेना के किसी अधिकारी से बात हुई, उन्होंने क्या जानकारी दी है?
यहाँ मुंबई में डिफेंस PRO है नरेंद्र विस्पुते, उनसे मेरी बात हुई तब उन्होंने बताया कि ये मरने वालों में एक सेलर है जिनका नाम राकेश कुमार है और एक कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय है जिसका नाम मोहनदास कलमकर है। और इस घटना के बाद जो INS विक्रमादित्य का जिस इलाके में ये गैस की रिसाव हुई थी उसको ठीक करने का और उसको एक कॉर्डन ऑफ करने का काम कर दिया गया है और अभी इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं नौसेना की तरफ से।
जानकारी दे रहे थे अश्विन अघोर। झारखंड में स्थानीयता के सवाल पर आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा ने राज्य में आज से 48 घंटे की आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया है। प्रमुख विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई अन्य दलों और आदिवासी संगठनों ने इस नाकेबंदी का समर्थन किया है। इसे देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इसके साथ ही झारखंड विकास मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर गाड़ियों की आवाजाही बाधित नहीं करने की हिदायत दी गई है। रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
झारखंड में सरकार जिन दलों की रही सालों तक स्थानीय नीति लागू करने की मांग उठती रही। आरोप प्रत्यारोप पर तमाम जद्दोजहद के बाद अब रघुवर दास की सरकार ने इस नीति को मंजूरी तो दे दी, पर विपक्षी दलों और आदिवासी मूलवासी संगठनों ने हल्ला बोल दिया है। 5 महीने के दौरान झारखंड ने 5 बार बंद का सामना किया है। नीति में यह प्रावधान किया गया है कि जो 30 सालों से झारखंड में रहता आया है वह झारखंडी माना जाएगा, जबकि झारखंड नामधारी दल और आदिवासी संगठन इस मांग पर अड़े हैं कि स्थानीय उन्हें माना जाए और सरकारी नौकरियां उन्हें दी जाए, जिनके पास अपने या पूर्वजों के नाम जमीन का रिकॉर्ड है। गौरतलब है कि झारखंड में जमीन का अंतिम सर्वे 1932 में हुआ था। झारखंड विकास मोर्चा विधायक दल के नेता प्रदीप यादव कहते हैं,
हमें उम्मीद है कि यह आंदोलन झारखंड की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, झारखंड के आवाम से जुड़ा हुआ है, झारखंड की जरूरत है ये मांगे। और इस आंदोलन में केवल झारखंड विकास मोर्चा का आंदोलन नहीं, ये आवाम का आंदोलन होगा और कम से कम 10 लाख लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम मित्तल का कहना है,
झारखंड विकास मोर्चा का झारखंड में कोई वजूद बचा नहीं है और इनकी आर्थिक नाकेबंदी भी का भी कोई असर होने वाला नहीं है, लेकिन ये मीडिया में बने रहने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम बना रहे हैं और अपनी जमीन तलाश रहे हैं।
जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि पार्टी नाकेबंदी का खुलकर साथ देगी। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे का कहना है,
हम लोगों ने फैसला लिया है, पार्टी ने फैसला लिया है कि इस आर्थिक नाकेबंदी को, चूंकि ये नाकेबंदी इस राज्य में घोषित स्थानीय नीति के विरोध में है, इसलिए यह फैसला लिया गया है कि इस नाकेबंदी में पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता नेता सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
इस बीच झारखंड पुलिस के प्रवक्ता एमएस भाटिया ने बताया है कि सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। खान खनिज वाले इलाकों में विशेष तौर पर गश्त करने को कहा गया है।
हर तरह की प्रिवेंटिव कार्रवाई, जिसमें कि अगर प्रिवेंटिव अरेस्ट की भी जरूरत पड़े तो वो भी होगा। इसके अलावा जो भी टारगेट एरिया संभावित हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है या माइनिंग एरियाज हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले एरियाज हैं, या जो रेलवे ट्रैक्स हैं जहां से कि ट्रेन जाती हैं, या नेशनल हाईवेज हैं जहां पे ट्रक्स वगैरह निकलते हैं, उन सभी में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम करेंगे ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो।
बहरहाल सरकार फिलहाल नीति में किसी तरह के फेरबदल के मूड में नहीं है और विपक्षी दलों के तेवर भी तल्ख हैं। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
बीबीसी इंडिया बोल।
फिल्मों पर सरकारी कैंची क्यों? उड़ता पंजाब फिल्म पर कैंची चलाने के आदेश के बाद पूछा जाने लगा है सवाल, क्या जरूरत है सेंसर बोर्ड की? क्या आप किसी फिल्म को सरकारी काट छांट के बाद देखना चाहेंगे या फिल्मकार को पूरी रचनात्मक आजादी मिलनी चाहिए? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 11 जून शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त है फिल्मों की समीक्षा का। इस हफ्ते दो फिल्में रिलीज हुई हैं। पहली एक थ्रिलर फिल्म है तीन, जिसमें अमिताभ बच्चन, विद्या बालन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में है, और दूसरी फिल्म है रणदीप हुड्डा की दो लफ्जों की कहानी। फिल्म देखने से पहले आपको उत्सुकता होगी कि समीक्षक इन्हें कैसे आंक रहे हैं। हमारी सहयोगी स्वाति बख्शी बीबीसी के फिल्म क्रिटिक अर्णव बैनर्जी की मदद से आपकी ये मुश्किल आसान कर रही हैं। सुनिए पेशकश।
हाउ आर यू?
सैम, कुछ मिला?
पिछले 8 साल से हर दिन आप यही सवाल करते हैं।
और कुछ है नहीं मेरे पास।
स्वागत है आपका बीबीसी फिल्म रिव्यू में। आज हम बात करेंगे दो फिल्मों की। इस हफ्ते की बड़ी रिलीज है तीन, जिसमें नजर आ रहे हैं अमिताभ बच्चन, विद्या बालन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और इसे निर्देशित किया है रिभु दास गुप्ता ने। मेरे साथ हैं बीबीसी फिल्म क्रिटिक अर्णव बैनर्जी। अर्णव, ये फिल्म कोरियन फिल्म मोन्टाज का रीमेक है जो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, तो कितना कारगर लगा आपको ये रीमेक?
स्वाति, ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा प्लॉट हो हमारे पास, फिर भी फिल्म जो है इतनी इंटरेस्टिंग ना बन पाए जितनी हम उम्मीद रखते हैं। यहाँ पे एक ग्रैंडफादर है जो अमिताभ बच्चन बने हैं। 8 साल पहले उनकी पोती अपहरण की वजह से खो जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। विद्या बालन एक कॉप हैं जो अमिताभ बच्चन को हेल्प करती हैं ढूंढने में, लेकिन नाकामयाब रहती हैं। ये यहाँ तक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, ऐसा लगता था कि अभी कुछ होने वाला है और हम एक मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उसके बाद क्या होता है ये तो खैर दर्शकों को देख के ही पता चलेगा, लेकिन इसके बाद कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती थी जो कि नहीं हो पाई।
खुशी के जाते सूरज को, सुकून के उजले गुंबज को, बुरी नजरों का निकल गया ग्रहण।
138 मिनट लंबी ये फिल्म है, तो क्या जो तीन बड़े नाम जुड़े हैं इस फिल्म के साथ वो लोगों को बिठा के रख पाएंगे इतनी देर तक?
देखिए बैठेंगे तो है क्योंकि अमिताभ बच्चन यहाँ पे पिछले कई दिनों से वो कई सारे रोल्स कर रहे हैं लेकिन वो कैरेक्टर में आ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों। अब तक तो इतने वो मंझे हुए कलाकार हो चुके हैं लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि वो पूरी तरह से रम नहीं पाते हैं कैरेक्टर में। पूरी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जो डायलॉग डिलीवरी करी है वो हस्की टोन में, एक हश टोन में बात करी है, यानी विद्या बालन, नवाजुद्दीन एक नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन पूरी फिल्म में हश टोन में बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मतलब कोई बूढ़ा आदमी भी अगर कोई बात कहता है ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही विस्पर करे हमेशा, तो वो एक मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी फिल्म के साथ। विद्या बालन का कोई रोल ही नहीं है फिल्म में, विद्या बालन के लिए अगर कोई देखना चाहते हैं तो ये फिल्म उनके लिए नहीं है। नवाजुद्दीन का कैरेक्टर थोड़ा सा मिस्टीरियस सा दिखाया, यानी वो एक सस्पेंस की तरह से उनको रखा गया है कि शायद दर्शक इस बात से वो इनको इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट लगे कि हो सकता है नवाजुद्दीन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है या नहीं, तो मिस्ट्री तो बनी रहती है। लेकिन पूरी फिल्म जो है इतनी, पता नहीं क्यों कलकत्ता में बेस्ड है, हर फिल्म में जो जगह होती है या सिटी होती है, जो बैकग्राउंड होता है, वो अपने आप में कैरेक्टर होता है। यहाँ पे कलकत्ता उस तरह से कोई कैरेक्टर नहीं है। तीन जो कैरेक्टर हैं मेन, अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन और विद्या बालन, उनके इर्द गिर्द घूमती है कहानी और एक बच्चा है, लेकिन बैकड्रॉप कुछ भी होता, चाहे बॉम्बे होता चाहे दिल्ली होता, तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कलकत्ता को उभार नहीं पाया है।
कितने सितारे निकल रहे हैं आपकी झोली से इस फिल्म के लिए?
मैं 3 को 5 में से 2.5 दूंगा।
आहटे कैसी है आहटे, सुनता हूँ आजकल है दिल बता।
और रणदीप हुड्डा इन दिनों बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर नजर आते हैं। इस हफ्ते भी उनकी फिल्म आई है 2 लफ्जों की कहानी। चर्चा नहीं हो रही है इस फिल्म की लेकिन आपने देखी है, बताएं कैसी है फिल्म?
दूसरी फिल्म 2 लफ्जों की कहानी में रणदीप हुड्डा है, रणदीप हुड्डा आजकल छाए हुए हैं, किसी भी रोल में वो आते हैं, वो छोटी बड़ी हर फिल्म कर रहे हैं, हर रोल में वो जान डाल देते हैं। लेकिन 2 लफ्जों की कहानी ऐसी फिल्म है, एक बॉक्सर की कहानी है जो यतीम था और उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो 3-3 जॉब्स करता है, कुआलालंपुर में रहता है, उसको एक ब्लाइंड लड़की से प्यार हो जाता है जो कि काजल अग्रवाल बनी है। फिल्म इतनी स्लो है और इतनी लंबी है कि आदमी बिल्कुल ऊब जाता है। फिल्म में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है को हमने पहले ना देखा हो।
एक वजह ढूंढते बेवजह ढूंढते खो गया मैं जहां ढूंढते।
और रणदीप हुड्डा बहुत ज्यादा फिल्में भी कर रहे हैं, एक के बाद एक उनकी, एक साल में 4-5 फिल्में आ जाती हैं।
हाँ, यहाँ पर उन्होंने कोशिश करी है लेकिन वो नाकामयाब हुए हैं क्योंकि स्क्रिप्ट में जान ही नहीं थी। वो चाहते हैं कि वो बहुत एक जोखिम उठाएं और बहुत बड़ा सा काम करें जिससे उनकी गर्लफ्रेंड जिससे वो शादी कर लेते हैं उसकी आँख ठीक हो जाए या उसका ऑपरेशन हो जाए। इसके लिए वो बहुत बड़ा एक रिस्क लेते हैं जो कि होना ही था फिल्म के क्लाइमेक्स में, लेकिन वो क्लाइमेक्स भी इतना लंबा खींच दिया गया है कि मुझे नहीं लगता कि पूरी फिल्म लोग देखना भी पसंद करेंगे।
तो कितने सितारे?
मैं 2 लफ्जों को 5 में से 1 दूंगा।
अब तक आप भी अपनी राय बना ही चुके होंगे और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। दिल्ली से निकलने वाले अखबारों में आज क्या कुछ छपा है बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिता कांडपाल जी। हरिता, क्या कहते हैं आज के अखबार?
अमरीश जी, आज सबसे पहले सारे अखबारों में मैं खबर देख रही हूँ अफगानिस्तान में जो भारतीय महिला का अपहरण हुआ है उसके बारे में, ज़्यादातर सभी अखबारों ने इस पर छापा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि कोलकाता की एक महिला अफगानिस्तान में अगवा हो गई है। 39 वर्षीय जूडित डिसूजा काबुल में पिछले 16 महीनों से काम कर रही हैं। ये आगा खान ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि इनको खोजने के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसके अलावा एक और खबर है जो हर अखबार पर छाई हुई है, वो है अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि हाईकोर्ट ने CBFC से कहा कि आपका काम सर्टिफिकेट देना है, फिल्मों पर कैची चलाना नहीं, दर्शकों के हाथ में रिमोट है, उन्हें फैसला करने दीजिए कि वो क्या चाहते हैं।
हमारा इंडिया बुल भी आज इसी विषय पर है, दर्शकों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।
जी, इसके अलावा द पायनियर अंग्रेजी अखबार ने एक खबर छापी है कि कांग्रेस ने यूपी चुनाव में कुछ बेड़ा पार लगाने के लिए प्रशांत किशोर का दामन थामा है। तो प्रशांत किशोर ने कुछ सिफारिशें की हैं कि शीला दीक्षित और प्रियंका गांधी को सामने लाया जाए और भाजपा नेताओं की तरह ही असेंबली चुनाव में ब्राह्मणों को कांग्रेस को जो है कुछ आकर्षित करने की तरकीबें निकालनी पड़ेंगी, कुछ इस तरह की बात प्रशांत किशोर ने कही है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है कि अदानी के प्रोजेक्ट में लगे हुए 10 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए नोटिस दिया गया है और ये ओडिशा में ये एक प्लांट पर काम किया जा रहा था, वहाँ पर उनसे कहा जा रहा है कि आप देश छोड़ के जाइए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कुछ खेल की खबरों की चर्चा कर लेते हैं। लंदन में कल से चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो गया। जर्मनी के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में भारत ने 3-1 से बढ़त लेने के बावजूद मैच 3-3 की बराबरी पर ख़त्म किया और जीत का सुनहरा मौका गंवा दिया। हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने लंदन में मौजूद वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी से इस मुकाबले पर बात की।
बिल्कुल सही मायने से जो है भारत की टीम, हालांकि उन्होंने जर्मनी से 3-3 का ड्रॉ खेला, मगर वो जरूर वापस जब गए होंगे काफी नाखुश होंगे क्योंकि उनके पास अधिकतर बहुत सारे समय के लिए एक अच्छी लीड थी और काफी देर के लिए 3-1 से वो टीम आगे थी और काफी अच्छा खेल रही थी। प्लेयरों का तालमेल काफी अच्छा था, उनकी स्पीड अच्छी थी, मगर आखिरी क्षणों में फिर से एक बार उन्होंने इतना सुनहरा मौका गंवा दिया और मैच के खत्म होने से 3 मिनट पहले जो है जर्मनी को एक पेनल्टी कॉर्नर के बाद पेनल्टी स्ट्रोक मिला और उसे जोनास गोमाल ने वो स्ट्रोक को कन्वर्ट करके जर्मनी को जो है एक बार फिर से बराबरी दिला दी। तो मैं कहूंगा ये अच्छी शुरुआत है, मगर थोड़ा सा खेद जरूर होगा भारतीय टीम को और उनके कोच को कि जर्मनी जैसी टीम के साथ पहले मैच में उन्हें विजय हासिल नहीं कर पाए।
ये थे वी कृष्ण स्वामी, वरिष्ठ खेल पत्रकार। और अब सुनिए बाकी के खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल शानदार खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल में साइना ने दूसरी वरीयता हासिल थाईलैंड की रथचानो किंतानॉन को 56 मिनट तक चले संघर्ष के बाद 28-26, 21-16 से हराया। उनके अलावा भारत के के श्रीकांत भी सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं। श्रीकांत ने कोरिया के क्वांग ही यो को 36 मिनट में ही 21-18, 21-17 से मात दी। अब सेमीफाइनल में आज के श्रीकांत का सामना डेनमार्क के आंस क्रिश्चियन विटिंग से होगा, जबकि साइना नेहवाल चौथी वरीयता हासिल चीन की वांग यिहान का सामना करेंगी। उधर बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा आगामी रियो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। अभिनव बिंद्रा का ये 5वां ओलंपिक होगा। उल्लेखनीय है कि अभिनव बिंद्रा ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। बिंद्रा भारतीय दल के सद्भावना दूत भी हैं। उधर भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज से 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है। हरारे में होने वाले पहले मुकाबले में भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सामने अपेक्षाकृत अनुभवहीन टीम के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ दमदार खेल दिखाना महत्वपूर्ण चुनौती है। टीम का दारोमदार धोनी के अलावा केएल राहुल, मनीष पांडे, केदार जाधव, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल पर रहेगा। वहीं जिम्बाब्वे अनुभवी एल्टन चिगुम्बुरा, हैमिल्टन मसाकाजा, सिकंदर रजा और कप्तान ग्रीम क्रीमर के दम पर पलटवार करने में सक्षम है।
सभा की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। महान मुक्केबाज मोहम्मद अली को आज अमेरिका के केंटकी में उनके गृहनगर लुईविल में दफनाने के बाद एक सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस सभा में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। करीब 14,000 लोगों ने इस सभा में शिरकत की। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में सीबीआई ने हिंदू जन जागरण समिति के नेता वीरेंद्र तावड़े को पनवेल से गिरफ्तार किया। इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। सीरिया की सरकारी समर्थित सेना को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के गढ़ रका शहर की तरफ बढ़ने में कामयाबी मिल रही है। लीबिया में त्रिपोली स्थित एकीकृत सरकार के समर्थन वाले सुरक्षा बलों ने कहा है कि उनके सैनिकों ने सिर्त शहर को नियंत्रण में ले लिया है। पेरू में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कीको फ्यूजीमोरी ने पिछले रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने नए राष्ट्रपति बने विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री पेद्रो पाउलो कुजिंस्की को बधाई दी है। कांटे के मुकाबले में कुजिंस्की को करीब 51% वोट हासिल हुए। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। तो अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।